आगे सबक देखिए भाई। व ईदा असलमत المرأة في دار الحرب وزوجها كافر او اسلم الحربي وتحته مجوسية لم يقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر। भाई गुज़श्ता सबक में आपने मसला पढ़ा था कि अगर एक मजूसी ने अपनी मां या बेटी से निकाह कर लिया है और फिर ये दोनों मुसलमान हो गए तो फिर इनमें जुदाई करवाई जाएगी। वजह ये कि महरमियत जो है निकाह के मुनाफी है, इब्तिदाअन भी महरमियत निकाह के मुनाफी है और बकाअन भी महरमियत निकाह के मुनाफी है भाई। महरमियत के होते हुए निकाह नहीं हो सकता, लिहाजा इनमें जुदाई करवाई जाएगी। जबकि इसके बरअक्स अगर दोनों में से सिर्फ एक मुसलमान हुआ या दोनों में से सिर्फ एक ने मुराफा किया है तो इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो भी दोनों में जुदाई करवाई जाएगी, और अगर दोनों में से सिर्फ एक ने मुराफा किया है फिर उनमें जुदाई नहीं करवाई जाएगी। इसलिए क्योंकि अगरचे दोनों में से एक ने अपने आप को इस्लामी हुक्म के सामने झुका दिया है लेकिन बहरहाल दूसरे का तो अभी भी यही एतकाद है कि यह निकाह जायज है, तो लिहाजा सिर्फ एक के मुराफे की वजह से दूसरे का इस्तेहकाक बातिल नहीं हो सकता, लिहाजा वो निकाह उसी तरह सही रहेगा भाई। और लेकिन अगर दोनों में से एक मुसलमान हो जाए तो फिर इस सूरत में जुदाई करवा दी जाएगी। वजह यह कि अल इस्लाम यालू वला युला भाई, इस्लाम गालिब होता है मगलूब नहीं। लिहाजा यहां पर अगरचे सिर्फ एक मुसलमान हुआ है लेकिन उसका एतकाद दूसरे के एतकाद पर गालिब आ जाएगा और जुदाई का हुक्म लगाया जाएगा भाई। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, दोनों में से एक मुसलमान हो जाए या दोनों में से एक मुराफा कर ले तो दोनों सूरतों में जुदाई करवाई जाएगी, तो वो एक के इस्लाम या एक के मुराफा में कोई फर्क नहीं करते भाई। जबकि इसके मुकाबले में अगर दोनों ने मुराफा किया तो फिर बिल इत्तेफाक इनमें जुदाई करवा दी जाएगी, इसलिए क्योंकि दोनों का मुराफा इसी तरह है जैसे दोनों का किसी आदमी को हकम बनाना। जैसे दोनों किसी एक आदमी को हकम बनाते हैं और उसको कहते हैं कि हम इस्लामी हुक्म जानना चाहते हैं, आप हमारे दरमियान उसके मुताबिक फैसला कर दीजिए। और आप जानते हैं जब किसी शख्स को हाकिम या सालिस बना लिया जाए तो दोनों फरीकों पर उसका हुक्म मानना लाजिम हो जाता है, उसका फैसला उन पर नाफिस हो जाता है। वजह यह कि उन्होंने खुद उसको अपने ऊपर विलायत दे दी, अपने ऊपर फैसल बना दिया, फैसला करने वाला बना दिया। तो जैसे हकम की सूरत में इनके उस शख्स पर लाजिम है कि इनके अंदर जुदाई करवाए तो इन दोनों का मुराफा भी इसी तरह तहकीम के दर्जे में है तो इनमें जुदाई करवाई जाएगी, तो इनमें जुदाई करवाई जाएगी। क्योंकि काजी जो है उसका दर्जा तो हकम से बढ़कर है भाई, हकम को तो सिर्फ दो फरीकों पर विलायत मिल जाती है लेकिन काजी को तो विलायत आम्मा हासिल है तमाम लोगों पर। तो जब तहकीम के अंदर इनमें जुदाई करवाना लाजिम होगा तो यहां दोनों के मुराफे की सूरत में भी इन दोनों में जुदाई करवाना लाजिम होगा भाई। फिर उसके बाद इन्होंने ये मसला जिक्र फरमाया कि अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए अलआयाज़ु बिल्ला तो फिर उसके लिए निकाह जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि वो तो कत्ल का मुस्तहिक हो चुका है। उसको अगर तीन दिन की मोहलत भी इस्तेहबाब के तरीके पर दी जाएगी तो वो उसको सिर्फ गौर व फिक्र के लिए वक्त दिया जा रहा है, लिहाजा उसके लिए निकाह की इजाजत नहीं होगी। और इसी तरह अगर कोई औरत मुर्तद्दा हुई है उसको कत्ल तो नहीं किया जाता लेकिन उसको हमेशा के लिए जेल में डाल देते हैं यहां तक कि वो दोबारा मुसलमान हो जाए या उसी जेल के अंदर उसकी मौत आ जाए, तो उसको भी जो कैद किया गया है गौर व फिक्र करने के लिए कैद किया गया है, लिहाजा उसको भी निकाह की इजाजत नहीं होगी। और नीज इसलिए भी क्योंकि जब वो कैद में है तो निकाह की मसलहतें हासिल नहीं हो सकती। भाई निकाह के मकासिद तो यह है, एक खानदान, एक नया खानदान बनेगा, एक घर आबाद होगा, औलाद होगी, उनकी तरबियत करेंगे, घर का इंतजाम चलाएंगे, लेकिन अगर बीवी कैद में है तो फिर तो यह मकासिद हासिल नहीं हो सकते। और निकाह तो अपने मकासिद के लिए मशरू है, उन मकासिद के हुसूल की वजह से शरीयत ने इजाजत दी है निकाह की, उस निकाह की अपनी जात की वजह से उसकी इजाजत नहीं दी गई। भाई और फिर यह भी मसला जिक्र फरमाया साहिब हिदाया ने कि अगर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो तो बच्चा उसके ताबिया होगा, इसलिए क्योंकि बच्चा जो है वालिदैन में से जिसका दीन आला और बेहतर हो बच्चा उसके ताबिया होता है, और जाहिर सी बात है इस्लाम तो सबसे आला दीन है, लिहाजा वालिदैन में से कोई एक भी मुसलमान हो तो बच्चे को मुसलमान ही शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर इसके मुकाबले में मियां बीवी में से एक जो है मजूसी है और एक अहले किताब में से है तो इस सूरत में इंदल अहनाफ अहले किताब का मजहब बेहतर है, क्योंकि कम से कम वो आसमानी दीन को मानते हैं और आसमानी किताब को मानते हैं, तो लिहाजा बच्चे को भी किताबी शुमार किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी बच्चे पर कुछ ना कुछ शफकत मौजूद है, क्योंकि मजूसी जो हैं वो अहले किताब के मुकाबले में बदतर हैं। भाई बदतर हैं, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह इस मसले में हमारी मुखालफत फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि बच्चे को मजूसी करार दिया जाएगा। वजह यह कि वो फरमाते हैं कि यहां तआरुज आ रहा है हिल्लत और हुरमत में, और एक चीज के हलाल होने और हराम होने में जब तआरुज आ जाए तो फिर जानिब हुरमत को तरजीह होती है, इसलिए क्योंकि इसमें एहतियात ज्यादा है। वजह यह कि अगर हम एक चीज जो है उसमें दोनों तरह की दलीलें आ रही हैं, एक दलील से पता चल रहा है यह हलाल है और दूसरी दलील से यह पता चल रहा हो कि यह हराम है, तो अगर हम हलाल की दलील को तरजीह दे दें और कहें कि यह चीज हलाल है और उसको इस्तेमाल जायज करार दे दें, और हकीकत तो अल्लाह जानते हैं, हो सकता है हकीकत के अंदर वो चीज हराम हो, तो देखो इस सूरत में एक हराम चीज का इस्तेमाल जायज हो जाएगा, जबकि उस चीज को अगर हराम करार दे दिया जाए और हो सकता है हकीकत में वो आइंदल्लाह हलाल हो तो भी कोई खराबी लाजिम नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक हलाल चीज के इस्तेमाल से हम रुक गए लेकिन इसमें कोई नुकसान वगैरह नहीं है, तो लिहाजा हिल्लत और हुरमत वाली दलीलें जमा हो जाएं, या यूं कहें कि एक मुबीह दलील है जो इबाहत साबित कर रही है और एक मुहरिम दलील है जो हुरमत साबित कर रही है, तो मुबीह और मुहरिम दलीलें जब जमा हो जाएं तो मुहरिम दलील को तरजीह होती है, इस क्योंकि इसमें एहतियात ज्यादा है। और यहां पर भी बच्चे को अगर किताबी करार दिया जाएगा तो उसका जबीहा भी हलाल और उसके साथ निकाह भी हलाल हो जाएगा मुसलमान के लिए, जबकि अगर बच्चे को मजूसी करार दिया जाएगा तो इस सूरत में उसका जबीहा भी हराम होगा और उसके साथ निकाह भी हराम होगा मुसलमान के लिए। तो यहां पर चाहे किताबी करार दें चाहे मजूसी करार दें हैं तो दोनों काफिर ही, क्योंकि हदीस में आता है अलकुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफर सारा का सारा एक ही दीन है, तो किताबी शुमार करें फिर भी काफिर, अगर मजूसी शुमार करें फिर भी काफिर, लेकिन एहतियात किस में ज्यादा है कि इसको मजूसी शुमार किया जाए, हुरमत वाली जानिब को तरजीह दी जाए। भाई उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया था कि अगर दारुल इस्लाम के अंदर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो मुसलमान होते ही मियां बीवी के दरमियान फौरन जुदाई नहीं आएगी, बल्कि काजी जुदाई करवाएगा और काजी पहले इस्लाम को दूसरे पर पेश करेगा। अगर बीवी मुसलमान हुई है तो खावंद पर इस्लाम को काजी पेश करेगा, और अगर खावंद मुसलमान हुआ है तो बीवी पर काजी इस्लाम को पेश करेगा, और फिर अगर वो इस्लाम ले आता है तो फिर तो वो इसी तरह इस निकाह पर बरकरार रहेंगे, और अगर ये इनकार कर देते हैं इस्लाम का तो फिर इस सूरत में काजी इनके दरमियान जुदाई करवा देगा। और तरफैन के नजदीक अगर इनकार करने वाला खावंद है तो खावंद की तरफ से जुदाई आई है, लिहाजा इस सूरत में यह तलाक के हुक्म में होगी यह जुदाई। जबकि अगर इनकार करने वाली औरत है तो औरत तो तलाक की अहल नहीं, वो तो तलाक नहीं दे सकती, लिहाजा ये जुदाई जो ये जुदाई औरत की तरफ से आई है तो इसको फस्ख निकाह शुमार किया जाएगा, इसको तलाक शुमार नहीं किया जाएगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि दोनों सूरतों में इसको फस्ख शुमार किया जाएगा। वो फरमाते हैं इसलिए क्योंकि इस जुदाई के अंदर मियां बीवी दोनों का दखल है, जब दोनों में से एक मुसलमान हुआ तो दोनों में इख्तिलाफ दीन आ गया और इस इख्तिलाफ दीन में मियां बीवी दोनों का दखल है कि दोनों का दीन अलग अलग है, और जब दोनों का दखल है तो आप इसको तलाक करार नहीं दे सकते क्योंकि तलाक तो सिर्फ खावंद की तरफ से आती है, तो सिर्फ खावंद अगर इसका सबब बनता फिर आप इसको तलाक करार देते, लेकिन यहां तो दोनों सबब बन रहे हैं। वो फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे मियां बीवी में से कोई एक मालिक बन जाए दूसरे का तो उसी वक्त निकाह फासिद हो जाता है और इसको फस्खे निकाह शुमार किया जाता है। वजह यह कि इस जुदाई में मियां बीवी दोनों का दखल है, एक मालिक बन गया है और दूसरा ममलूक बन गया है, इसलिए फिर इनमें जुदाई आएगी और उसको फस्ख करार देंगे क्योंकि दोनों का इस जुदाई में दखल है भाई। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर एक मुसलमान हुआ है मियां बीवी में से तो दूसरे पर इस्लाम को पेश नहीं किया जाएगा, इसलिए क्योंकि हमने इन लोगों से अहदे जिम्मा किया हुआ है, हमें शरीयत ने मना किया है कि इनसे तारुज नहीं करना, इनके मामलात में दखल नहीं देना, तो लिहाजा इसलिए अगर हम इस्लाम पेश करेंगे ये तो हम इनके मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं भाई, लिहाजा एक मुसलमान हुआ है तो दूसरे पर इस्लाम को पेश नहीं किया जाएगा। तो फिर इनमें जुदाई कैसे आएगी, तो वो फरमाते हैं कि यहां पर ये जो एक इनमें से मुसलमान हुआ है या तो ये सोहबत से पहले मुसलमान हुआ होगा या सोहबत के बाद, अगर सोहबत से पहले इस्लाम लाया है इनमें से कोई एक, चाहे मियां खावंद इस्लाम लाया है चाहे बीवी इस्लाम लाई है, तो सोहबत से पहले निकाह अभी पक्का नहीं, सोहबत से पहले निकाह पक्का नहीं, तो लिहाजा इस्लाम लाते ही फौरन खुद ब खुद इनमें जुदाई आ जाएगी, इनका निकाह फसख हो जाएगा। और अगर खावन सोहबत कर चुका था अपनी बीवी से तो फिर इस सूरत के अंदर निकाह पक्का हो गया है तो अब तीन हैज गुजारने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ही दोनों के अंदर जुदाई आएगी। और मैंने आपको मसला बतलाया था, याद रखना अगर खावंद सोहबत से पहले बीवी को तलाक दे दे तो बीवी पर इद्दत नहीं है, इद्दत तो औरत पर इसलिए वाजिब होती थी ताकि पता चल जाए कि ये कहीं हामिला तो नहीं, कहीं इसके पेट में खावंद का हमल तो नहीं है, तो इसलिए वहां इद्दत गुजारना पड़ती थी। लेकिन यहां तो सोहबत ही नहीं हुई, रुखसती ही नहीं हुई, उससे पहले ही खावंद ने तलाक दे दी है, तो इस सूरत में औरत पर इद्दत नहीं होती, तलाक देते ही फौरन निकाह बिल्कुल टूट गया और फौरन ही औरत दूसरी जगह निकाह कर सकती है। लेकिन अगर खावन सोहबत कर चुका है और फिर तलाक देता है तो फिर इस सूरत में औरत पर इद्दत वाजिब है ताकि पता चल जाए कहीं यह औरत हामिला तो नहीं, कहीं इसके पेट में खावन का बच्चा तो नहीं, लिहाजा फिर उस सूरत में उसको तीन हैज गुजारने पड़ते हैं तो फिर जुदाई आ जाती है, फिर निकाह पूरी तरह खत्म हो जाता है और फिर औरत जहां चाहे निकाह कर सकती है। तो सोहबत से पहले तलाक दी जाए तो फौरन ही जुदाई आ जाती है, औरत जहां मर्जी निकाह कर ले, और सोहबत के बाद खावन तलाक दे तो इद्दत के बाद फिर औरत को आगे निकाह की इजाजत होगी, उससे पहले निकाह की इजाजत नहीं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर भी अगर सोहबत से पहले दोनों में से कोई एक मुसलमान हुआ है तो निकाह अभी पक्का नहीं, लिहाजा इस्लाम लाते ही दोनों में जुदाई हो गई, फौरन ही निकाह फसख हो गया। और अगर खावन सोहबत कर चुका है उसके बाद दोनों में से कोई एक मुसलमान हुआ है तो अब इस सूरत में फौरन जुदाई नहीं आएगी, बल्कि औरत जो है वो तीन हैज गुजारेगी और फिर उसके बाद जुदाई आ जाएगी। और अगर उससे पहले दूसरा भी मुसलमान हो गया तो फिर दोनों का निकाह बरकरार है क्योंकि अभी जुदाई आई ही नहीं थी और दूसरा भी मुसलमान हो गया। जबकि हमारे नजदीक जब मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो गया तो अब निकाह के मकासिद हासिल नहीं हो सकते, और निकाह तो अपने मकासिद के एतबार से मशरू है, अपनी जात के एतबार से मशरू नहीं। तो अब जरूरी है कि दोनों में जुदाई आए, लेकिन जुदाई के लिए कोई सबब चाहिए। अब एक मुसलमान हुआ है तो इस्लाम को जुदाई का सबब करार नहीं दिया जा सकता, इसलिए क्योंकि इस्लाम तो जोड़ पैदा करने वाला है, इस्लाम तो अल्लाह की इताअत का नाम है, तो उसकी वजह से इंसान की मिल्कियत जाया नहीं हो सकती भाई कि ये कहा जाए उसकी मिलके निकाह जाया हो गई, खत्म हो गई। नहीं, इस्लाम तो अल्लाह की इताअत का नाम है, वो तो जोड़ पैदा करने वाला है, तो लिहाजा इस्लाम को जुदाई का सबब करार नहीं दिया जा सकता। फिर क्या किया जाए, तो कहते हैं दूसरे पर इस्लाम को पेश करेगा काजी, और फिर उसका इनकार जो है वो जुदाई का सबब बन सकता है, इसलिए क्योंकि इनकार के अंदर वो अल्लाह की नियामतों की नाशुक्री कर रहा है, अल्लाह की नियामतें इस्तेमाल कर रहा है और अल्लाह के दीन को कबूल करने से इनकार कर रहा है, तो ये इनकार अनिल इस्लाम ये सलाहियत रखता है कि इसको जुदाई का सबब करार दिया जाए, लिहाजा काजी दूसरे पर इस्लाम को पेश करेगा। अगर वो मुसलमान हो जाता है तो ये निकाह उसी तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि अब निकाह के मकासिद हासिल हो सकते हैं, मियां बीवी में से एक पहले मुसलमान था और एक अब मुसलमान हो गया, अब दोनों मुसलमान हैं तो निकाह के मकासिद हासिल हो सकते हैं, तो निकाह बरकरार रहेगा। और अगर वो दूसरा इनकार कर देता है तो फिर काजी उनमें जुदाई करवा देगा। फिर तरफेन ये भी फरमाते हैं कि अगर इनकार खावंद ने किया है तो वो उसको तलाक करार देंगे, वजह यह कि खावंद उस बीवी को रोककर इमसाक बिल मारूफ पर अमल कर सकता था। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, फइमसाकुम बि मारूफिन औ तसरीहुम बि एहसान, कि अच्छे तरीके से बीवी को रोक लो, औ तसरीहुम बि एहसान, या एहसान और नेकी के साथ उसको रुख्सत कर दो, यानी तलाक दे दो। तो तसरीह से क्या मुराद है, तलाक मुराद है। फइमसाकुम बि मारूफिन, के अच्छे तरीके से इनको रोकना है, औ तसरीहुम बि एहसान, या रुख्सत करना है एहसान के साथ, रुख्सत करने से क्या मुराद है, तलाक मुराद है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी खावन पर इस्लाम को पेश किया जा रहा है और खावन को कुदरत है, वो बीवी को अच्छे तरीके से रोक सकता है, लेकिन वो इस्लाम नहीं लाया तो उसने गोया अपने इख्तियार से इमसाक बिल मारूफ को तर्क कर दिया, और जब इमसाक बिल मारूफ को उसने तर्क कर दिया तो अब तसरीह बिल एहसान पर अमल वाजिब हो गया, क्योंकि दो ही सूरतें थीं, या बीवी को अच्छे तरीके से रोक लो या उसको रुख्सत कर दो एहसान के साथ। तो जब उसने इमसाक बिल मारूफ पर अमल नहीं किया तो अब तसरीह बिल एहसान पर अमल किया जाएगा, और काजी उस खावंद का नाइब बनकर तसरीह बिल एहसान पर अमल करेगा, और तसरीह बिल एहसान ये तो किसका नाम था, तलाक का नाम था, तो लिहाजा ये जुदाई तलाक के हुक्म में होगी। जबकि अगर बीवी ने इनकार किया है तो फिर काजी उस औरत का नाइब बनकर तसरीह बिल एहसान पर अमल नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि तसरीह से क्या मुराद है, तलाक, और तलाक तो खावन की तरफ से आ सकती है, बीवी की तरफ से नहीं आ सकती। लिहाजा इनकार अगर बीवी ने किया है तो काजी तसरीह बिल एहसान में बीवी का नाइब नहीं बन सकता, क्योंकि बीवी के पास तो तसरीह बे एहसान की अहलियत और सलाहियत ही नहीं है। तो इस सूरत में जो काजी जुदाई करेगा वो फस्खे निकाह शुमार होगी, वो तलाक शुमार नहीं होगी। और फिर इन्होंने आपको ये भी बतलाया कि जब काजी इन दोनों के दरमियान जुदाई करवाएगा तो फिर याद रखना, अगर ये जुदाई का सबब खावंद बना है तो फिर दो सूरतें होंगी, या खावंद सोहबत कर चुका होगा या सोहबत नहीं की। अगर सोहबत कर चुका है तो फिर आप जानते हैं कि सोहबत से महर पक्का हो जाता है, तो फिर पूरा महर देना पड़ेगा। और अगर सोहबत से पहले ही जुदाई आई है और इनकार खावंद ने किया है, और इस सूरत में जुदाई तलाक के हुक्म में है, तो ये तलाक कबल सोहबत पाई गई, और सोहबत से पहले तलाक दी जाए तो निस्वे महर देना पड़ता है, तो यहां भी खावंद को फिर निस्वे महर देना पड़ेगा। लेकिन अगर इनकार औरत ने किया है तो जुदाई का सबब औरत बनी है, तो फिर इस सूरत में अगर खावन सोहबत कर चुका था औरत से, फिर तो महर पहले से ही पक्का हो चुका है, बेशक और इनकार औरत ने किया है लेकिन महर तो पहले ही से पक्का हो चुका है, तो खावन पूरा महर देगा। लेकिन अगर ये जुदाई सोहबत से पहले हुई है, यानी औरत ने इनकार किया है इस्लाम लाने से और अभी सोहबत नहीं हुई तो फिर इस सूरत में चूंकि इस जुदाई का सबब औरत बनी है तो उसको अब निस्फ महर नहीं मिलेगा भाई। ये इसी तरह है जैसे मुर्तदा होना या मुतावात वाले मसले में, अगर औरत मुर्तदा हो जाए और सोहबत से पहले मुर्तदा हुई है तो फिर इसको कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि इस जुदाई का सबब वो खुद बनी है। बात समझ में आ गई। और इसी तरह मुतावात कि अगर एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और उस औरत ने उसकी पहली बीवी के बेटे से गलत ताल्लुक कायम कर लिया तो इस सूरत में भी ये औरत उस आदमी के लिए बहू के दर्जे में हो गई। बहू और बहू तो इंसान पर हराम होती है तो यहां पर भी जुदाई आएगी। और ये जुदाई अगर सोहबत से पहले आई है तो चूंकि औरत इसका सबब बनी है तो लिहाजा औरत को निस्फ महर भी नहीं मिलेगा। और अगर खावन सोहबत कर चुका था फिर तो महर पहले से ही पक्का है, फिर वो सारा देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वईदा असलमतिल मरअतु फी दारिल हर्बी व ज़ौजुहा काफिरुन औ असलमल हर्बी व तहतहु मजूसियतुन लम यक़ाइल फुरक़तु अलैहा हत्ता तहीज सलासा हियज सुम्मा तबीनु मिन ज़ौजिहा। भाई सूरत मसला ये कि दारुल हर्ब के अंदर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो गया। पहली सूरत क्या थी, गुज़श्ता सबक में क्या पढ़ा आपने कि अगर दारुल इस्लाम में मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो गया तो काजी दूसरे पर इस्लाम को पेश करेगा और अगर वो इनकार कर देगा तो काजी जुदाई करवा देगा, और अगर वो इस्लाम ले आता है काजी के जुदाई करवाने से पहले पहले तो ये उसी तरह अपने निकाह पर बरकरार रहेंगे। अगर यही मसला दारुल हर्ब में पेश आया तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि दारुल हर्ब में तो कोई काजी भी नहीं है जो इन पर इस्लाम को पेश करे और फिर इनमें इनकार की सूरत में जुदाई करवा दे। तो हमारे फुकहा फरमाते हैं कि दारुल हर्ब के अंदर अगर औरत मुसलमान हो गई और खावंद काफिर है, या खावंद मुसलमान हो गया और बीवी मजूसिया है, ये मजूसिया या मुशरिका है यानी अहले किताब नहीं, क्योंकि अगर अहले किताब है औरत फिर तो निकाह बरकरार रहेगा। खावंद मुसलमान हुआ और बीवी क्या है, अहले किताब है, तो अहले किताब से तो वैसे भी मुसलमान के लिए निकाह जायज है तो इस सूरत में जुदाई नहीं आएगी। तो दारुल हर्ब में बीवी मुसलमान हो गई और खावंद काफिर है, या खावंद मुसलमान हो गया और बीवी मजूसिया या मुशरिका है, तो अब कैसे जुदाई आएगी। तो फुकहा फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर यहां चूंकि काजी भी नहीं है जुदाई करवाने के लिए तो अब मजबूरन इस हुक्म की निस्बत शर्त की तरफ करना पड़ेगी। किसकी तरफ, शर्त की तरफ करना पड़ेगी। और शर्त क्या है कि औरत तीन हैज गुजारेगी और फिर उसके बाद इनमें जुदाई आ जाएगी। वो औरत जो मुसलमान हुई है और खावन काफिर है, या खावन मुसलमान हुआ औरत मजूसिया या मुशिका है, तो तीन हैज जब गुजर जाएंगे तो इनमें खुद ब खुद आपस में जुदाई आ जाएगी। लेकिन अगर तीन हैज गुजरने से पहले पहले दूसरा भी मुसलमान हो गया तो फिर इस सूरत में ये अपने उसी निकाह पर बरकरार रहेंगे और कोई जुदाई वगैरह इनमें नहीं आएगी। भाई याद रखो, यहां आपको जाब्ता बतलाएंगे कि यहां हमने शर्त की तरफ हुक्म की निस्बत की है, शर्त की तरफ हुक्म की निस्बत की है। जैसे जैसे मुसलमान खावन अपनी बीवी को तलाक देता है तो वो औरत फौरन आगे निकाह नहीं कर सकती बल्कि उसको इद्दत गुजारना पड़ेगी। फिर जब इद्दत गुजार लेगी तो फिर निकाह पूरे तौर पर टूट जाएगा और खत्म हो जाएगा। दौरान इद्दत भी निकाह के कुछ ना कुछ अहकाम और असरात बाकी हैं। भाई इद्दत के दौरान का नफका भी किसके जिम्मे होता है, खावन के जिम्मे, क्योंकि औरत ने उसकी वजह से अपने आप को अगले निकाह से रोक रखा है। तवज्जो है, एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो औरत तलाक मिलते ही फौरन आगे निकाह नहीं कर सकती बल्कि उसको इद्दत गुजारना पड़ेगी। क्यों इद्दत गुजारती है, ताकि पता चल जाए कहीं ये खावन से हामिला तो नहीं, कहीं इसके पेट में खावन का बच्चा तो नहीं है। लिहाजा तो औरत ये जो इद्दत गुजारती है ये खावन की वजह से गुजारती है, लिहाजा इस इद्दत के दौरान का नफका खावन के जिम्मे है, वो इस बीवी को नफका देगा। नीज रिहाइश भी खावंद ही के जिम्मे है, इसको रिहाइश भी देगा इस दौरान भाई। और नीज अगर ये हामिला हुई तो इस बच्चे का नसब भी खावंद से साबित हो जाएगा। और ये सब तो निकाह के अहकाम है। नफका तो अपनी बीवी को देना पड़ता है, रिहाइश तो अपनी बीवी को दी जाती है, अपनी बीवी से जो औलाद हो उसका नसब साबित होता है खावंद से। लेकिन यहां देखो तलाक के बावजूद ये अहकाम है, तलाक के बाद इद्दत के अंदर खावंद नफका भी दे रहा है, सुकना भी दे रहा है, और औलाद पैदा हुई तो वो इसी खावंद की शुमार होगी। मालूम हुआ अभी भी निकाह के अहकाम बाकी हैं, निकाह पूरी तरह टूटा नहीं। हां जब इद्दत गुजर जाएगी, अब निकाह पूरी तरह टूट गया, उसके सारे असरात खत्म हो गए, अब औरत जहां चाहे निकाह कर सकती है। मालूम हुआ निकाह के टूटने के लिए तीन हैज शर्त हैं। इद्दत शर्त है, शर्त है तो फिर मशरूत भी है, शर्त नहीं तो मशरूत भी नहीं। तो तीन हैज गुजारेगी तो निकाह टूटेगा पूरी तरह, और ये फिर आगे जहां चाहे निकाह कर सकती है, उससे पहले नहीं पाई। तो ये जो इद्दत का गुजारना ये क्या है, शर्त है जुदाई के लिए, फिर पूरी तरह खामन से जुदा हो जाएगी। यहां एक जाबता याद रखना भाई, याद रखो हुक्म की निस्बत इल्लत की तरफ की जाती है, जब इल्लत पाई जाएगी हुक्म भी पाया जाएगा, लेकिन बाज औकात हुक्म की निस्बत इल्लत की तरफ नहीं की जा सकती, तो फिर इस सूरत के अंदर हुक्म की निस्बत सबब की तरफ की जाती है। किसकी तरफ? सबब की तरफ की जाती है। और अगर सबब की तरफ भी हुक्म की निस्बत न हो सके तो फिर इस सूरत में हुक्म की निस्बत शर्त की तरफ की जाती है। क्या जाप्ता हुआ कि हुक्म की निस्बत इल्लत की तरफ की जाती है कि इस इल्लत की वजह से यह हुक्म आया है, लेकिन बाज औकात इल्लत की तरफ हुक्म की निस्बत करना मुमकिन नहीं रहता, तो फिर उस हुक्म की निस्बत सबब की तरफ की जाती है कि इस सबब की वजह से यह हुक्म आया है। और अगर सबब की तरफ भी हुक्म की निस्बत न की जा सके तो फिर जो शर्त है उसकी तरफ हुक्म की निस्बत की जाती है। बात समझ में आ गई। और यहां इल्लत और सबब में फर्क भी समझ लें। याद रखो इल्लत वो है कि जब वो पाई जाए तो हुक्म जरूर पाया जाएगा। इल्लत जब भी पाई जाए मालूल जरूर पाया जाता है, जैसे सूरज जब भी निकलेगा दिन जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज तो निकले और दिन ना हो, तो सूरज का निकलना इल्लत है दिन होने के लिए। तो जब भी इल्लत पाई जाए हुक्म जरूर पाया जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में सबब जो है वो हुक्म तक पहुंचाता है, लेकिन सबब के पाए जाते हुए हुक्म का पाया जाना जरूरी नहीं है। सबब पाया जाए तो हो सकता है हुक्म भी पाया जाए, और हो सकता है हुक्म ना पाया जाए। जबकि इल्लत जब पाई जाए तो फिर हुक्म जरूर पाया जाएगा। फर्क समझ में आया? जैसे देखो, जैसे वुजू टूटने के इल्लत जो है वो खुरूज नजासत है। बदन से जब भी खुरूज नजासत होगी तो वुजू टूटने का हुक्म लगाया जाएगा। लेकिन बाज औकात इस इल्लत पर हम मुत्तले नहीं हो सकते। मसलन कोई इंसान सोया हुआ है पहलू के बल या सीधा लेटा हुआ है और सो गया, तो इस सूरत के अंदर भी अमूमन बदन से खुरूज नजासत होता है, लेकिन चूंकि इंसान सोया हुआ है उसको इस इल्लत का पता नहीं चल सकता। तो लिहाजा नींद की हालत में खुरूज नजासत का इलम नहीं हो सकता। तो यहां पर अब हुक्म की निस्बत सबब की तरफ कर दी जाएगी। ये खुरूज नजासत तक जो पहुंचाने वाली चीज है यानी नींद, उसी की तरफ हुक्म की निस्बत कर दी जाएगी कि जब भी इस किस्म की नींद पाई गई जिसमें इंसान पहलू के बल लेटा है या सीधा लेटा हुआ है और जिससे बदन ढीला पड़ गया है, तो उस सूरत में वुजू टूटने का हुक्म लगाया जाएगा। तवज्जो है? देखो अब यहां पर हुक्म क्या था, वुजू का टूटना, और इल्लत क्या थी, खुरूज नजासत। लेकिन यहां पर हुक्म की निस्बत खुरूज नजासत की तरफ नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि इंसान सोया हुआ है, उसे इलम ही नहीं होगा। तो इहतमाल है हो सकता है खुरूज नजासत हुआ हो, तो लिहाजा यहां सबब को ही इल्लत के कायम मकाम कर दिया, यानी हुक्म की निस्बत सबब की तरफ कर दी कि जब भी ऐसी नींद पाई जाएगी वुजू टूट जाएगा। यह इसी तरह है जैसे सफर है भाई। देखो सफर के अंदर शरीयत ने आसानी कर दी कि चार रकात फर्ज के बजाय आप दो रकात पढ़ें भाई, कसर नमाज अदा करें। और इसकी इल्लत जो है वह मशक्कत है, क्योंकि सफर के अंदर मशक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो शरीयत ने शरीयत ने आसानी कर दी कि चार रकात के बजाय दो रकात फर्ज अदा कर लें। तो इस नमाज के अंदर जो तख़फीफ आई उसकी इल्लत सफर की मशक्कत है, लेकिन इस मशक्कत का पता नहीं चल सकता। वजह यह कि बाज लोग जो हैं वो उनकी तबीयत नाजुक होती है, वो थोड़ा सा भी सफर करते हैं उनको बड़ी मशक्कत होती है, और बाज लोग ऐसे हैं कि उनको अल्लाह ने ऐसा मजबूत बदन दिया होता है कि कई कई दिन भी वो सफर करें तो उन्हें मशक्कत का एहसास ही नहीं होता भाई। तो लिहाजा शरीयत ने जो नमाज में तख़फीफ की उसकी इल्लत मशक्कत है, लेकिन ये तबीयतें चूंकि मुख्तलिफ हैं मशक्कत का पता नहीं चल सकता कि किसको ज्यादा मशक्कत हुई है और किसको कम। तो लिहाजा यहां हुक्म की निस्बत इल्लत की तरफ नहीं की जा सकती, तो फिर मजबूरन इस हुक्म की निस्बत जो है, यानी ये जो नमाज में तख़फीफ है इसकी निस्बत सफर की तरफ कर दी जाएगी कि तीन दिन के सफर का जो भी इरादा करेगा तो उसकी नमाज में तख़फीफ आ गई, अब उसको चार रकात फर्ज के बजाय दो रकात अदा करना पड़ेंगे। तो इस नमाज में तख़फीफ की इल्लत क्या थी? मशक्कत। लेकिन मशक्कत का तो पता नहीं चल सकता, तो फिर सबब यानी सफर की तरफ ही हुक्म की निस्बत कर दी गई कि जिसने तीन दिन का सफर का इरादा किया तो यह मशक्कत वाला सफर है, तीन दिन के अंदर मशक्कत हो जाती है, तो इसी की तरफ हुक्म की निस्बत की जाएगी। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि हुक्म की निस्बत इल्लत की तरफ की जाती है, और अगर इल्लत की तरफ हुक्म की निस्बत न की जा सके फिर सबब की तरफ की जाती है, और अगर सबब की तरफ भी हुक्म की निस्बत न की जा सके तो फिर हुक्म की निस्बत शर्त की तरफ की जाती है। तो बात चल रही थी दारुल हर्ब के अंदर, मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो गया, अब वहां पर तो काजी कोई नहीं, काजी दूसरे पर इस्लाम को पेश करता और फिर वो इनकार करता तो काजी उनमें जुदाई करवा देता, तो वहां पर काजी भी मौजूद नहीं, और जुदाई भी जरूरी है क्योंकि मुसलमान के तहत मजूसिया या मुशरिका औरत नहीं रह सकती भाई, और इसी तरह मुसलमान औरत काफिर के निकाह में नहीं रह सकती भाई। तो निकाह में तो फसाद आ चुका है, खराबी आ चुकी है, लिहाजा अब जुदाई जरूरी है, और काजी भी नहीं है कि काजी उनमें तफरीक करवा दे, तो फिर इस सूरत में हुक्म की निस्बत मजबूरन हमें शर्त की तरफ करना पड़ेगी। और जुदाई के लिए शर्त क्या थी? तीन हैज औरत गुजारेगी फिर ही पूरी जुदाई आएगी, वो आगे निकाह कर सकती है। तो वहां पर भी हमने दारुल हर्ब में तीन हैज जो है उनको जुदाई का सबब करार दे दिया, तो जब वो औरत तीन हैज गुजार लेगी तो खावन से जुदा हो जाएगी, और अगर तीन हैज गुजरने से पहले पहले वो दूसरा शख्स जो है वो भी मुसलमान हो गया, तवज्जो है, यानी वो बीवी मुसलमान हो गई या खावन मुसलमान हो गया इस इन तीन हैज के दौरान, तो फिर ये अपने निकाह पर बरकरार रहेंगे, फिर कोई जुदाई वगैरह नहीं आएगी। मसला समझ में आ गया। तो कहते हैं वह ईदा असलमतिल मरअतु फी दारिल हर्ब, जब मुसलमान हो गई कोई औरत दारुल हर्ब में, वजह जुहा काफिर, इस हाल में कि उसका खावंद काफिर है और काफिर मर्द के तहत तो मुसलमान औरत नहीं रह सकती, औ असलम अल हर्बी या हर्बी मुसलमान हो गया, व तहतहू मजूसियतुन और उसके तहत एक मजूसिया औरत है, लम यकाइल फुरकतु अलैहा तो उस औरत पर जुदाई वाकई नहीं होगी, हत्ता तहीजा सलासा हियजिन यहां तक कि वह औरत तीन हैज गुजार ले, हियज जमा है हैज की, तो यहां तक कि वह औरत तीन हैज गुजार ले, सुम्मा तबीनु मिन ज़ौजिहा फिर यह औरत अपने खावन से जुदा हो जाएगी जब तीन हैज गुजार लेगी, वहादा लि अन्नल इस्लाम लैसा सबबन लिल फुरकती और ये इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है वो जुदाई का सबब नहीं है। हम पहले बता चुके हैं इस्लाम तो अल्लाह की इताअत का नाम है और इस्लाम तो जोड़ का हुक्म देता है, तोड़ का हुक्म नहीं देता, लिहाजा इस्लाम को जुदाई का सबब करार नहीं दिया जा सकता। वहादा लि अन्नल इस्लाम लैसा सबबन लिल फुरकती और ये इसलिए क्योंकि इस्लाम जो है वो जुदाई का सबब नहीं है, वल अर्ज़ु अलल इस्लाम मुतअज़्ज़िरुन और इस्लाम पेश करना भी मुतअज़्ज़िर है, उस काफिर पर हम इस्लाम भी पेश नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर तो काजी ही नहीं है, वहां पर हमारी विलायत और हकूमत नहीं है। तो कहते हैं वल अर्ज़ु अलल इस्लाम मुतअज़्ज़िरुन और इस्लाम पर पेश करना भी मुतअज़्ज़िर है, लिकुसूरिल विलायती विलायत की कमी की वजह से कि हमारे हाकिम की विलायत में कमी है, उस जगह पर उसकी हकूमत नहीं है। वला बुद्द मिन अल फुरकती, और जुदाई भी जरूरी है। दफअन लिल फसादी, फसाद को दूर करने के लिए, क्योंकि औरत मुसलमान हुई है और खावंद काफिर है, और काफिर के तहत मुसलमान औरत नहीं रह सकती भाई। या इसी तरह खावन मुसलमान हुआ है और औरत मजूसिया या मुशरिका है, और मुसलमान के लिए तो अपने आकद में मजूसिया या मुशरिका को रखना जायज नहीं। तो निकाह में फसाद आ चुका है, खराबी आ चुकी है, अब जुदाई जरूरी है भाई, लेकिन जुदाई के लिए कोई सबब चाहिए। तवज्जो है। तो कहते हैं वला बुद्द मिनल फुरकती, और जुदाई जरूरी है। दफअन लिल फसाद, इस फसाद को दूर करने के लिए। फअकमना शर्तहा, तो हमने कायम मकाम कर दिया इस जुदाई की शर्त को। वह हुआ मुज़िय्युल हियज़, और वो तीन हैजों का गुजरना है। ये तीन हैजों का गुजरना शर्त था किसके लिए? जुदाई के लिए। दारुल इस्लाम में भी कोई खावंद अपनी बीवी को तलाक देता है कोई मुसलमान, तो औरत फौरन आगे निकाह नहीं कर सकती, बल्कि कितनी मुद्दत गुजारना पड़ेगी? तीन हैज गुजारेगी, फिर ही पूरी तरह जुदाई आएगी। मालूम हुआ तीन हैज ये शर्त है जुदाई के लिए। तो हमने शर्त को सबब के कायम मकाम कर दिया। फ़ाकम ना शर्तहा, तो हमने ये जो जुदाई की शर्त थी, और वो जुदाई की शर्त क्या थी? वह हुआ मुज़िय्युल हियज़, वो तीन हैजों का गुजरना है, उसको हमने कायम मकाम कर दिया। मकाम सबब, किसके? सबब के। हमने उसको सबब के कायम मकाम कर दिया, क्योंकि यहां पर काजी तो है नहीं कि वो दूसरे के इस्लाम से इनकार की वजह से वो काजी उनमें जुदाई करवा दे, काजी तो है नहीं। तो हमने इस शर्त को ही सबब के कायम मकाम कर दिया। बात समझ में आ गई भाई? यहां पर साहिब हिदायत की जरा इबारत देख लीजिए। ऊपर उन्होंने जिक्र किया वल अर्जु अल इस्लामी मुतअज़्ज़िरुन, और पेश करना अल इस्लामी इस्लाम पर मुतअज़्ज़िरुन, वो मुमकिन नहीं है। साहिब हिदायत को कहना यह चाहिए था, एक तो मुसलमान हो गया है, दूसरे पर इस्लाम को पेश करना मुमकिन नहीं है। दूसरे पर इस्लाम को पेश करना मुमकिन नहीं है। तवज्जो है। लेकिन साहिब हिदायत बरअक्स फरमा रहे हैं कि दूसरे को इस्लाम पर पेश करना मुमकिन नहीं है। तवज्जो है। कहना क्या चाहिए था कि इस्लाम को दूसरे पर पेश करते, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? दूसरे को इस्लाम पर पेश नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई है। साहिब हिदायत की फसीह बलीग इबारतें हैं, इंसान हैरान रहता है भाई इनकी फसाहत और बलागत पर। यह दरअसल उन्होंने अरबों के इस मुहावरे से लिया है। अरब कई दिनों के बाद अपने ऊंट और ऊंटनियों को पानी पिलाते थे भाई। ऊंट अपने जिस्म में पानी जखीरा कर लेता है, चूंकि वहां पर तो पानी कम होता था, तो वो कई कई दिन तक इसी तरह वो गुजारा करते थे। उसी जिस्म के अंदर जखीरा किए हुए पानी पर ऊंट गुजारा करता रहता, और फिर 6-7 दिन 8 दिन के बाद फिर उनको पानी पिलाने के लिए लाते थे भाई। तो जब ऊंट या ऊंटनी को तालाब के पास लाया जाता, तो अरब इसके लिए मुहावरा बोलते, आरस तो नाकता अलल हौजी, मैंने ऊंटनी को हौज पर पेश कर दिया, ऊंटनी को हौज पर पेश कर दिया। तो यहां पर भी साहिब हिदायत उसी मुहावरे के अंदाज में फरमा रहे हैं, जैसे वहां अरब क्या कहते थे, अरस तो ना कताल हौजी, मैंने ऊंटनी को तालाब पर पेश किया। यहां पर भी साहिब हिदायत फरमा रहे हैं कि दूसरे को इस्लाम पर पेश करना मुतअज़्ज़िर है, दूसरे को इस्लाम पर पेश नहीं किया जा सकता। मालूम हुआ साहिब हिदायत इस्लाम को तशबीह दे रहे हैं एक हौज और तालाब के साथ, और हौज और तालाब के पास प्यासे आते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तालाब जो है उन प्यासों का मोहताज नहीं, लेकिन वो प्यासे तालाब के मोहताज हैं। तो यहां पर भी साहिब हिदायत फरमा रहे हैं कि ये जो दूसरा है ये गोया प्यासा है, लेकिन इसको इस्लाम के तालाब पर पेश नहीं किया जा सकता कि ये अपनी प्यास उससे बुझा ले। इसलिए क्योंकि ये दारुल हर्ब है, यहां हमारी हकूमत ही नहीं है, यहां कोई काजी नहीं है कि वो इस प्यासे को इस्लाम के तालाब पर पेश करे। तो यह माना है वल अर्ज़ु अलल इस्लामी मुतअज़्ज़िरुन, और इसको इस्लाम पर पेश करना भी मुतअज़्ज़िरुन मुमकिन नहीं है भाई। लिकुसूरिल विलायती, हमारे हाकिम की विलायत में कमी की वजह से, कि उसकी वहां पर हकूमत नहीं है, वला बुद्द मिनल फुरकति दफअन लिल फसादी, और जुदाई भी जरूरी है इस फसाद को दूर करने के लिए। क्या फसाद आया कि काफिर के आकद में मुसलमान औरत नहीं रह सकती, या मुसलमान के आकद में मजूसिया या मुशरिका नहीं रह सकती, फसाद आ चुका है। तो इस फसाद को दूर करने के लिए जुदाई भी जरूरी है। फअकम ना शर्तहा, तो हमने इस जुदाई की जो शर्त है उसको कायम मकाम कर दिया। और वही वो शर्त क्या है, कहते हैं वह हुआ मुजीयुल हैज़, और वो तीन हैजों का गुजरना है। तो इस शर्त को हमने कायम मकाम कर दिया, मकाम असबबी, किसके कायम मकाम, सबब के कायम मकाम कर दिया, यानी जुदाई के, भाई वो जो जुदाई काजी करवाता था इनकार की वजह से। कमा फी हफ्रिल बीरी, जैसे कि कुआं खोदने के अंदर है, जैसे कुआं खोदने में है। याद रखो, कोई शख्स अगर अपनी जमीन के अंदर कुआं खोदना चाहे तो शरीयत ने उसको इजाजत दी है, लेकिन अगर कोई शख्स रास्ते के अंदर कुआं खोद लेता है और फिर इस कुएं के अंदर कोई शख्स गिरकर मर गया, तो फिर वो शख्स जिसने कुआं खोदा था उस पर दियत आएगी, क्योंकि इस मौत का सबब कौन बना है, वो कुआं खोदने वाला। तवज्जो है, वो कुआं ना खोदता तो यहां पर कोई शख्स उसमें गिरकर ना मरता। तो रास्ते में कोई शख्स कुआं खोद ले और उस कुएं के अंदर कोई चलने वाला गिरकर मर जाए तो कुआं खोदने वाले को पूरी दियत अदा करना पड़ेगी जी। अब देखो, यहां एक शख्स कुएं के अंदर गिरकर मर गया है, तो गिरने की इल्लत क्या है, यह शख्स कुएं में क्यों गिरा, तो फुकहा फरमाते हैं कि इस कुएं में गिरने की इल्लत इस आदमी का वजनी होना है, यानी इसका वजन है, इसका बोझ है और सिकल है। अगर यह आदमी वजनी ना होता, हवा की तरह हल्का फुल्का होता, फिर तो यह अंदर ना गिरता भाई। तो गिरने की इल्लत क्या है, उस आदमी का वजनी होना। लेकिन वजनी होना यह तो एक तबई चीज है, हर चीज का कुछ ना कुछ वजन होता है, अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है चीजों को, इसमें तो किसी की तरफ से कोई ज्यादती नहीं, वजनी होने में तो कोई ज्यादती नहीं, ये तो एक तबई चीज है। लिहाजा यहां पर इस मरने की निस्बत वजनी होने की तरफ नहीं की जा सकती, अगरचे इल्लत यही है, वजन ना होता वो ना गिरता, तो इल्लत है वजनी होना, लेकिन इसकी तरफ हुक्म की निस्बत नहीं की जा सकती कि इसे मौत की इल्लत करार दिया जाए। फिर अगर इल्लत की तरफ हुक्म की निस्बत ना हो सके तो फिर उसके बाद सबब की तरफ की जाती है। और सबब क्या था, किस चीज ने इस आदमी को पहुंचाया, कहते हैं उसके रास्ते पर चलने ने। अगर वो इस रास्ते पर न चलता तो इस कुएं में भी न गिरता, तो चलना सबब हुआ इस कुएं में गिरने का और मौत का जी। चलना क्या हुआ, सबब हुआ इस मौत का। लेकिन इस सबब की तरफ भी हम हुक्म की निस्बत नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो रास्ता है, रास्ते पर चलना तो हर एक का हक है, उसमें तो कोई ज्यादती वगैरह नहीं, तो लिहाजा इस चलने की तरफ भी हम इस कत्ल की निस्बत नहीं कर सकते। तो फिर इस सूरत में जो शर्त है, यानी कुआं खोदना, उसकी तरफ हम हुक्म की निस्बत करेंगे। कोई शख्स कुएं में तभी गिर सकता है जब पहले कुआं तो खोदा जाए, कुआं खोदोगे तो कोई उसमें गिर सकता है, कुआं नहीं खोदा तो उसमें कोई गिर भी नहीं सकता। मालूम हुआ कुआं खोदना यह है शर्त भाई, ये क्या है, जैसे वुजू नमाज के लिए शर्त है, वुजू है तो नमाज है, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं, इसी तरह ये कुआं खोदना शर्त है, कुआं खोदोगे तो कोई गिर सकता है, कुआं नहीं खोदा तो कोई कैसे गिर सकता है भाई, तो कुआं खोदना क्या हुआ, शर्त। तो यहां पर तीन चीजें मौजूद हैं, एक इस कत्ल की इल्लत है और उस आदमी का वजनी होना, लेकिन वो एक तबई चीज है, हम उसकी तरफ इस कत्ल की निस्बत नहीं कर सकते। जब इल्लत की तरफ हुक्म की निस्बत ना हो सके तो फिर सबब की तरफ हुक्म की निस्बत की जाती है, लेकिन सबब तो यहां इस कत्ल का, वो इस आदमी का इस रास्ते पर चलना है, और उस चलने में कोई ज्यादती नहीं है, हर एक के लिए इस रास्ते पर चलना मुबाह था, तो इसके लिए भी जायज था, तो सबब की तरफ भी इस कत्ल की निस्बत नहीं हो सकती। तो फिर इस सूरत में हुक्म की निस्बत शर्त की तरफ की जाती है, और शर्त क्या थी यहां पर, कुएं का खोदना। तो यह मालूम हुआ यह कत्ल कुआं खोदने की वजह से हुआ है, लिहाजा उस कुआं खोदने वाले को दियत अदा करना पड़ेगी। बात समझ में आ गई, तो दलील चल रही थी कि जब हुक्म की निस्बत सबब की तरफ ना हो सके तो फिर शर्त की तरफ हुक्म की निस्बत की जाती है। चुनांचे हमने भी दारुल हर्ब के अंदर दोनों में से कोई एक मुसलमान हुआ तो वहां पर सबब यानी काजी तो है नहीं, वो तो जुदाई करवा नहीं सकता, तो वहां पर शर्त जो है उसको सबब के कायम मकाम कर दिया जाएगा, तो फिर शर्त यानी तीन हैज के गुजरने की तरफ जुदाई की निस्बत करेंगे और तीन हैज औरत गुजार लेगी तो वहां खुद ब खुद जुदाई आ जाएगी। जैसे कुआं खोदने के अंदर कत्ल की निस्बत शर्त यानी कुआं खोदने की तरफ की जाती है। मसला समझ में आ गया। कहते हैं कमाफी हफरिल बिरी, जैसे कुआं खोदने में है, वला फर्का बैनल मदखूल बिहा वगैरिल मदखूल बिहा, और कोई फर्क नहीं है मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा में। मदखूल बिहा जिसके साथ खावंद ने सोहबत की है। याद रखो इंदल अहनाफ दारुल हर्ब के अंदर अगर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान होता है तो तीन हैज के बाद इनमें जुदाई आएगी, और इसके अंदर मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा दोनों बराबर हैं। भाई वैसे तो आपने पढ़ा है कि अगर खावंद बीवी को तलाक देता है तो अगर सोहबत की है तो फिर उसको इद्दत गुजारना पड़ेगी, तीन हैज गुजारेगी फिर जुदाई आएगी, लेकिन अगर खावंद ने बीवी से सोहबत ही नहीं की तो फिर तो तलाक देते ही फौरन जुदाई आ गई, अब इस औरत पर इद्दत वाजिब नहीं। तो साहिब हिदाया आपको बतला रहे हैं कि ये जो दारुल हर्ब के अंदर जो जुदाई आ रही है, दारुल हर्ब के अंदर जो औरत तीन हैज गुजारेगी और फिर जुदाई आएगी, तवज्जो है, ये तीन हैज कोई इद्दत वाले हैज नहीं है, ये जुदाई के लिए हमने इस शर्त को सबब के कायम मकाम कर दिया है, तो ये इद्दत नहीं। ये जो इन दोनों में से एक मुसलमान हुआ है, इसमें सोहबत हुई हो चाहे सोहबत न हुई हो, दोनों का एक ही हुक्म है, दोनों सूरतों में तीन हैज गुजारने पर ही जुदाई आएगी, चाहे खावंद ने भी सोहबत भी न की हो भाई, क्योंकि ये जो तीन हैज गुजार रही है ये कोई इद्दत के हैज नहीं है, ये जुदाई के हैज हैं। फर्क समझ में आया। तो कहते हैं वला फर्क बैनल मदखूली बिहा व गैर मदखूली बिहा, और कोई फर्क नहीं है मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा के अंदर। व शाफी रहमहुल्लाहु यफसिलु कमा मर्रा लहू फी दारिल इस्लामी, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फर्क करते हैं जैसे कि उनकी बात गुजर गई दारुल इस्लाम में। वो जो पीछे दारुल इस्लाम वाला मसला गुजरा था, दारुल इस्लाम में अगर मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो जाए तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं कि दूसरे पर इस्लाम को भी पेश नहीं करेंगे, क्योंकि वरना तो उनके मामलात में दखल देना लाजिम आएगा और हमें तो उनके मामलात में दखल देने से मना किया गया है, तो फिर जुदाई कैसे आएगी। तो वो फरमाते हैं कि सोहबत से निकाह पक्का होता है, बगैर सोहबत के निकाह पक्का नहीं, लिहाजा अगर बगैर सोहबत के एक इस्लाम लाया है तो फिर इस्लाम लाते ही खुद ब खुद जुदाई आ गई, और अगर सोहबत के बाद दोनों में से एक मुसलमान हुआ है तो फिर तीन हैज के बाद जुदाई आएगी जी। तो मालूम हुआ वो मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा में फर्क करते हैं। गैर मदखूल बिहा में एक के मुसलमान होते ही जुदाई आ जाती है, और मदखूल बिहा के अंदर तीन हैज के बाद जुदाई आएगी, लेकिन हमारे नजदीक यहां कोई फर्क नहीं है। तो ये माना है वला फर्क बैनल मदखूली बिहा वगैरिल मदखूली बिहा, और कोई फर्क नहीं है उस औरत में जिसके साथ सोहबत की गई है और वो जिसके साथ सोहबत नहीं की गई। व शाफी रहमहुल्लाह यफसिलु, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फर्क करते हैं मदखूल बिहा और गैर मदखूल बिहा में। कमा मर्रा लहू फी दारिल इस्लामी, जैसे उनकी बात गुजर गई दारुल इस्लाम के मसले में। وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا۔ بھئی دیکھو ابھی مسئلہ آپ نے پڑھا، دار الحرب میں اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو پھر وہاں جدائی کیسے آئے گی، تین حیض جب عورت گزار لے گی تو پھر اس کے بعد جدائی آ جائے گی۔ और मैंने आपको बतलाया ये जो तीन हैज औरत गुजारेगी ये जुदाई के लिए हैं, ये इद्दत वाले तीन हैज नहीं है भाई। तो अब जुदाई आ गई, क्या जुदाई के बाद वो औरत अगर मुसलमान है तो फिर इद्दत भी गुजारेगी या नहीं? तो साहिबैन फरमाते हैं कि अब इद्दत भी अलग गुजारना पड़ेगी। जैसे तलाक देने से जुदाई आ जाती है और उसके बाद औरत को इद्दत गुजारना पड़ती है, तो यहां पर भी तीन हैज गुजारे, खावंद से जुदाई आ गई। और जब जुदाई आ गई, अब औरत अगर मदखूल बिहा है, खावंद उससे सोहबत कर चुका है, तो शरीयत का क्या हुक्म है? इस औरत को इद्दत गुजारना पड़ेगी, यानी तीन मजीद हैज गुजारना पड़ेंगे। तो साहिबैन फरमाते हैं कि मियां बीवी में से बीवी मुसलमान हुई है और दोनों में जुदाई आ गई, तीन हैज गुजार लिए इस औरत ने, तो फिर उसके बाद तीन हैज अलग इद्दत के इसको गुजारने पड़ेंगे, फिर ही इसको आगे निकाह की इजाजत होगी, उससे पहले नहीं। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, जुदाई आ गई, अब उसके बाद कोई इद्दत गुजारने की जरूरत नहीं, ये जहां चाहे निकाह कर सकती है। तो कहते हैं वह इदा वकातिल फुरकतु, और जब जुदाई वाक हो गई, वल मरअतु हरबियतुन, और औरत हरबिया है यानी वो गैर मुस्लिमा है, फला इद्दत अलैहा, तो उस पर कोई इद्दत नहीं है। औरत हरबिया है ना, काफिरा है, काफिरों के हक में तो इस्लामी अहकाम साबित नहीं, लिहाजा उस पर तो कोई इद्दत नहीं, जुदाई आ गई है। लेकिन अगर वह औरत मुसलमान है तो भी इमाम साहब फरमाते हैं उस पर इद्दत नहीं होगी, जबकि साहिबैन फरमाते हैं अगर वह औरत मुसलमान है तो फिर उस पर इद्दत अलग लाजिम होगी, उसको इद्दत अलग गुजारना पड़ेगी। वह इनकानत हियल मुस्लिम तफकदालिका इंदा अबी हनीफत रहमहुल्ला, और अगर यह औरत जो है यह मुसलमान है तो भी इसी तरह है इमाम साहिब के नजदीक, जैसे हरबिया पर इद्दत नहीं थी तो इसी तरह मुसलमान औरत जो है उस पर भी इद्दत नहीं होगी। कौन सा मसला चल रहा है? दारुल हर्म में मियां बीवी में से कोई एक मुसलमान हो गया और फिर तीन हैज गुजर गए, अब दोनों में क्या आ गई? जुदाई। तो अब वो जुदा होने वाली या तो वो हरबिया होगी या मुस्लिमा होगी। तो जुदा होने वाली अगर हरबिया है, गैर मुस्लिमा है, तो उस पर बिल इत्तेफाक इद्दत नहीं है। लेकिन अगर वो मुसलमान है वो औरत, तो इमाम साहब के नजदीक उस पर भी इद्दत नहीं होगी, जबकि साहिबैन फरमाते हैं अगर औरत मुसलमान है तो फिर उस पर इद्दत वाजिब है भाई। तो कहते हैं वह इन कानत ही अल मुस्लिमत फकदालिका इंदा अबी हनीफत रहमहुल्ला, और अगर ये औरत मुसलमान है तो भी इमाम साहब के नजदीक इसी तरह है, यानी इस पर इद्दत नहीं होगी, खिलाफ अल्लाहुमा, बखिलाफ साहिबैन के, वो फरमाते हैं इस पर इद्दत होगी। वह सयाती का इंशा अल्लाह ताला, और अनकरीब आपके पास ये आ जाएगा इंशा अल्लाह, यानी अनकरीब आगे चंद सत्रों के बाद साहिब हिदाया बयान फरमाएंगे, साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि इमाम साहब फरमाते हैं इस औरत पर इद्दत नहीं, और साहिबैन फरमाते हैं ये मुसलमान औरत है तो इस पर इद्दत है क्योंकि ये मुसलमान है, जब ये मुसलमान औरत है तो इस पर शरीय अहकाम लागू होंगे, जब शरीय अहकाम लागू होंगे तो मुसलमान औरत को खावन से जुदाई के बाद इद्दत गुजारना पड़ती है, फिर ही वो आगे निकाह कर सकती है, लिहाजा इसको भी इद्दत गुजारना पड़ेगी। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, ये औरत अगर मुसलमान है तो भी इस पर कोई इद्दत नहीं। वजह यह वो फरमाते हैं कि जो इद्दत होती है ये माकबल वाले निकाह का असर होता है, माकबल में निकाह था, खावंद को इस औरत पर मिल्कियत निकाह हासिल थी, तो उस खावंद की मिल्कियत निकाह के एहतराम के तौर पर, उसकी इज्जत के तौर पर औरत पर शरीयत इद्दत वाजिब करती है, ताकि पता चल जाए कहीं औरत खावंद से हामिला तो नहीं। तो यह इद्दत किसका असर होता है? माकबल के निकाह का असर है, और किस लिए शरीयत ने वाजिब किया है? खावंद की मिल्कियत के एहतराम के तौर पर, खावन की मिल्कियत के एहतराम के और इज्जत के तौर पर शरीयत ने इद्दत को औरत पर वाजिब किया है, ताकि पता चल जाए कहीं ये औरत इस खावन से हामिला तो नहीं। मालूम हुआ ये खावन की मिल्कियत के एहतराम के तौर पर औरत पर इद्दत वाजिब की जाती है, लेकिन हरबी, हरबी का तो कोई एहतराम नहीं, हरबी का तो कोई एहतराम नहीं। जैसे कोई मुसलमान जो है गलती से अगर दारुल हर्ब चला जाए बगैर अमान के, तो देखो वो दारुल हर्ब वाले उसको पकड़ लेंगे भाई, अब ना उस मुसलमान की जान महफूज है और ना उसका माल महफूज है, हो सकता है वो उसको गुलाम बनाएं, हो सकता है वो उसको कत्ल कर दें और उसका माल भी उससे छीन लेंगे। तो देखो दारुल हर्ब में बगैर अमान के कोई मुसलमान गया तो उसका ना जान महफूज है और ना माल महफूज है। इसी तरह अगर कोई हरबी यहां आता है बगैर अमान के, गलती से इधर आ गया, तो उसके साथ भी वही सुलूक किया जाएगा जो वो हमारे लोगों के साथ करते हैं। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ हरबी की मिल्कियत का कोई एहतराम नहीं है, और जब हरबी की मिल्कियत का कोई एहतराम नहीं है तो उसकी मिल्के निकाह का भी कोई एहतराम नहीं होगा। तो ये जो इद्दत औरत पर शरीयत वाजिब करती है ये किस लिए वाजिब करती है? खावंद की मिलके निकाह के एहतराम के तौर पर, खावंद की मिलके निकाह जो है उसकी इज्जत के तौर पर, और हरबी की मिल्कियत के तो कोई इज्जत और एहतराम नहीं। लिहाजा हरबी की मिलके निकाह की वजह से औरत पर इद्दत भी वाजिब नहीं होगी। दलील चल रही है इमाम साहब की। इमाम साहब फरमाते हैं दारुल हर्ब के अंदर वहां पर जुदाई आई है, तवज्जो है, अगर खावंद मुसलमान हुआ है तो औरत तो हरबिया है तो उस औरत पर तो इस्लामी हुक्म लाजिम है नहीं बिल इत्तेफाक, और अगर मुसलमान होने वाली औरत है तो उस पर इस्लामी अहकाम लाजिम होंगे। और लेकिन ये जो औरत पर इद्दत वाजिब की जाती है ये खावंद की मिल्कियत निकाह की इज्जत के तौर पर, और ये औरत मुसलमान हुई है इसका खावंद तो हरबी है तो इस हरबी की मिलके निकाह का कोई एहतराम नहीं होगा, लिहाजा इस मुसलमान औरत पर भी कोई इद्दत वाजिब नहीं होगी। भाई तो ये साहिबे हिदाया आपको चंद सत्रों के बाद बयान करेंगे, तो यहां वो सिर्फ इतना फरमाते हैं वसयती का इंशा अल्लाह ताला के अनकरीब ये बात आपके पास आ जाएगी, यानी ये इख्तिलाफ, इस इख्तिलाफ का बयान आ जाएगा। आगे देखिए वईदा असलमा जौजुल किताबियति फहुमा अला निकाहिहिमा, और अगर किताबिया औरत का खावंद मुसलमान हो गया, किताबिया औरत का खावंद मुसलमान हो गया चाहे दारुल इस्लाम में हो चाहे दारुल हर्ब में, तो वो अपने निकाह पर बरकरार हैं क्योंकि मुसलमान के लिए इब्तिदाअन किताबिया से निकाह जायज है। मुसलमान ईसाई या यहूदी औरत से निकाह कर सकता है, तवज्जो है, और यहां पर इब्तिदाए निकाह नहीं है बल्कि बकाए निकाह है। भाई ये दोनों तो पहले मसलन दोनों पहले गैर मुस्लिम थे ना, तो आप जब खावंद इस्लाम लेकर आया है और बीवी की ताबिया है तो ये तो इब्तिदाए निकाह तो नहीं हो रही इस वक्त, निकाह की इब्तिदा तो पहले से हो चुकी है, ये तो बकाए निकाह की हालत है। तो जब मुसलमान के लिए किताबिया के साथ इब्तिदाअन निकाह जायज है तो बकाअन भी जाहिर सी बात है निकाह जायज होगा। तो लिहाजा दारुल इस्लाम या दारुल हर्ब में खावन मुसलमान हुआ और बीवी किताबिया है तो फिर उसी तरह वो अपने निकाह पर बरकरार रहेंगे। मसला समझ में आ गया। तो कहते हैं वईदा असलमा जौजुल किताबियति, और जब किताबिया औरत का खावंद मुसलमान हो गया, फहुमा अला निकाहिहिमा, तो ये दोनों अपने निकाह पर बरकरार हैं, लिअन्नहु यसिहु निकाहु बैनहुमा इब्तिदाअन, इसलिए क्योंकि इन दोनों के दरमियान तो इब्तिदाअन भी निकाह सही था, मुसलमान किताबिया से निकाह कर सकता है, फलियबका औला, तो ये कि वो निकाह बाकी रहे ये ज्यादा लायक है, तो ज्यादा लायक है कि निकाह बाकी भी रहे। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।